ओम शांति। अभी हमारा सत्र है कल्प वृक्ष, जिसके द्वारा धर्मों का इतिहास हम समझेंगे। इस विश्वविद्यालय के प्रारंभ में स्वयं निराकार शिव परमात्मा ने पिताश्री ब्रह्मा बाबा को दिव्य दृष्टि देकर जो मूल चार चित्र बनवाए थे उसमें से ये एक चित्र है। एक है त्रिमूर्ति, एक है सृष्टि चक्र जो आज सुबह आपका चला, और ये कल्प वृक्ष। और कल एक आप लेसन करेंगे कर्मों की गति का, वो 84 जन्मों की सीढ़ी। ये हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के मूल लेसन है। इससे हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, और जब ज्ञान स्पष्ट होता है, हमारी मान्यताएं सही हो जाती है, तो फिर जीवन स्वतः सही हो जाता है। ये तो आप सब मानते हैं कि जैसी मनुष्य की मान्यता होती है वैसा वो व्यवहार करता है। जीवन के अनेक पहलू है और उनसे संबंधित हमारी अनेक मान्यताएं हैं, बिलीफ्स जिसको हम कहते हैं। वो मान्यता आत्मा के बारे में आपकी क्या है, परमात्मा के बारे में क्या है, इस वर्ल्ड साइकिल के बारे में आप क्या मानते हैं, युगों का इतिहास, धर्म की व्याख्या, कर्म की गति, सुख दुख, आलोक परलोक, स्वर्ग नर्क, पुरुषार्थ प्रारब्ध, जीवन की हजारों बातें हैं और उनसे संबंधित हर एक की अपनी अपनी मान्यता है। वो मान्यता आपके अपने मन की है या कोई शास्त्रों से ली है या कोई अन्य के मन की है, कोई मनुष्य के मन की है, लेकिन जैसी मान्यता होगी वैसा ही व्यवहार आप करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपसे पूछूं कि सुख के बारे में आप क्या मानते हैं। अगर कोई ये मानता है कि सुख माना खाओ पियो मौज करो, तो उसका जीवन ऐसा ही चलेगा। अगर कोई ये मानता है कि नहीं त्याग में आनंद है, तो उसका जीवन उस रीति से चले। अगर ये मान्यताएं गलत हैं, तो जीवन भी गलत ही चलता रहता है। इसलिए हमारी सभी मान्यताएं बिलीफ सिस्टम को करेक्ट करने के लिए हमारे पास मूल सत्य ज्ञान चाहिए, और वही ज्ञान का सार जो इस विश्वविद्यालय में बेसिक 7 दिन के कोर्स में सिखाया जाता है, उसमें से आत्मा के बारे में आपने समझा, परमात्मा के बारे में समझा, योग के बारे में समझा, सृष्टि चक्र के बारे में समझा, ये हैं कल्प वृक्ष धर्म के बारे में। तो 6 लेसन तो आप यहां से करके जाएंगे, 1 लेसन बाकी होगा जो आप वहां केंद्र में जाकर करेंगे। तो अब हम इस विषय पर आते हैं, मनुष्य के जीवन में 2 बातें महत्वपूर्ण है।
एक है धर्म और दूसरा है कर्म। हम कर्म को भी नहीं छोड़ सकते हैं, कर्म हमें करने ही हैं, क्योंकि हम चैतन्य शक्ति आत्मा हैं। चैतन्यता मीन्स एक्टिव, सक्रिय। तो जैसे ही आत्मा इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर आती है और शरीर धारण करती है, उसके बाद एक क्षण भी कर्म किए बिगैर रह नहीं सकती है। इसलिए कर्म का संपूर्ण संन्यास कोई भी नहीं कर सकता है। कई कहते हैं कि वे हम कर्म सन्यासी हैं, वे अपना घर बार छोड़, पारिवारिक सामाजिक जिम्मेवारियों को छोड़ जंगल में चले जाते हैं, और वे कहते हैं कि हम कर्म सन्यासी हैं। लेकिन संपूर्ण कर्म सन्यासी कोई भी नहीं बन सकता है, क्योंकि जंगल में जाना, वहां जाकर भी जीवन जीना, आंखों से देखना, मस्तक से सोचना, साधना करना, ये भी तो कर्म है। इसलिए कर्म को हम नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरा मुख्य बात है धर्म। धर्म भी महत्वपूर्ण है, धर्म को भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि धर्म की धारणा के बिगैर हम कर्म को भी श्रेष्ठ नहीं बना सकते। जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई हमारे लिए तो कर्म ही धर्म है, वर्क इज वर्शिप, बस अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति जो हमारी फर्ज है वो फर्ज अदा करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, हमारे लिए तो यही धर्म है। लेकिन कर्तव्य पालन करना, अपनी फर्ज अदाई करना बेशक एक बहुत अच्छा गुण है, लेकिन धर्म हमें ऐसे अनेकानेक सद्गुणों का ज्ञान देता है और उसकी धारणा करवाता है। इसलिए धर्म के बिना कर्म को भी हम श्रेष्ठ नहीं बना सकते। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन के अंदर कर्म और धर्म दोनों का समन्वय करें। आज की स्थिति क्या है? कर्म अलग है, धर्म अलग है। कर्म माना हम समझते हैं कि हमारी गृहस्थी, देह के संबंध और दुनियावी कारोबार, और धर्म माना हम समझते हैं कि भाई कोई आश्रम है, सन्यासी है, शिष्य है, कथा कीर्तन जहां हो रहा है। आज कर्म अलग हो गए हैं, धर्म अलग हो गया है।
हम धर्म के नाम पर एक घंटा, आधा घंटा, दो घंटा जो भी हम कुछ करते हैं वो कर लेते हैं, चाहे आरती, भजन, मंदिर जाना, देव दर्शन करना, शास्त्र पठन करना, कथा श्रवण करना। धर्म के नाम पर जो हमारा क्रियाकांड है वो हम एक घंटा, दो घंटा नियम से कर लेते हैं और हमें सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हमने धर्म के नाम पर कुछ किया है। लेकिन बाकी के 22 घंटे हमें याद भी नहीं रहता है कि धर्म हमें क्या सिखाता है। हम 2 घंटे का धर्म करके बाकी के 22 घंटे अधर्म करने की जैसे कि परमिट ले लेते हैं। इसलिए आज धर्म का कर्म पर कोई प्रभाव नहीं है। धर्म मंदिर में रह जाता है, क्रियाकांड में सीमित रह जाता है और कर्म घर संसार में होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, पहले लोग कहते थे गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज आश्रम अलग हो गए हैं, गृहस्थ अलग हो गया है। अगर आश्रम जैसी पवित्रता, शांति अगर हम अपने गृहस्थ जीवन में धारण करें तब कहेंगे कि गृहस्थाश्रम। तो आज हमारे कर्म पर धर्म का प्रभाव नहीं है। धर्म की इस स्थिति को देखकर आज का जो युवा वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, वो धर्म से नास्तिक हो रहा है, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी, हमारे बड़े रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, रोज भजन कीर्तन करते हैं, रोज देव दर्शन कथा श्रवण करते हैं, लेकिन घर आकर रोज गुस्सा भी करते हैं, तेरा मेरा भी करते हैं, हेरा फेरी भी करते हैं। इसलिए धर्म का आचरण में प्रभाव न देखने के कारण वे सोचते हैं कि रोज मंदिर जाना, रोज भगवान को कहना और फिर आकर वही पाप करना, इससे तो हम अच्छे हैं, हम भगवान को कहते भी नहीं हैं और करते भी नहीं। इसलिए वे दिन प्रतिदिन नास्तिक होते जाते हैं। तो अब आवश्यकता ये है कि कर्म में धर्म को कैसे समाएं। तो इसके लिए हमें धर्म का सही अर्थ समझना होगा, धर्म का सही इतिहास जानना होगा। धर्म का अर्थ है धारण करना। ध्रुव धातु से यह संस्कृत क्रियापद है, ध्रुव धारयति से धर्म शब्द बना है। जीवन में जो कुछ सत्य है, श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, उसे आचरण में लाना, वो है प्रैक्टिकल धर्म। तो यहां वृक्ष के रूप में संसार की तुलना की। जैसे आज सुबह आपने देखा कि इस विश्व नाटक की तुलना चक्र के साथ की, कि जैसे चक्र चलता ही रहता है
ये विश्व नाटक भी चलता ही रहता है। यहां संसार की तुलना वृक्ष के रूप में की है धर्म की दृष्टि से। जैसे वृक्ष में हम बीज बोते हैं और उस बीज से जड़ें निकलती हैं, तना निकलता है, डाल डालियां निकलती हैं, पत्ते फूल फल होते हैं और वृक्ष का पूरा विस्तार होता है। फिर वही वृक्ष पुराना होकर जर्जरीभूत होकर आखिर वो टूट जाता है और उनके ही बीज से फिर नया वृक्ष उगता है। इस प्रकार इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का जो बीज रूप है वो स्वयं निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव है। जैसे बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समाया हुआ है, एक छोटा सा बीज कितना बड़ा वृक्ष का विस्तार उसमें समाया है, लेकिन वो बीज जड़ होने के कारण कह नहीं सकता है कि मेरे अंदर इतना बड़ा वृक्ष समाया है। इस मनुष्य सृष्टि वृक्ष का बीज परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, इसलिए वे आकर हमें वृक्ष के आदि मध्य और अंत का इतिहास बताते हैं। तो परमात्मा शिव इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है क्योंकि वो इस वृक्ष के आदि मध्य अंत के इतिहास का ज्ञाता है, नॉलेजफुल है, इसलिए उसे रचयिता क्रिएटर कहते हैं। क्रिएटर माना ये नहीं कि वो उत्पन्न करते, क्रिएटर मींस उसके ज्ञाता है, ज्ञान के सागर है। सृष्टि चक्र को कल्प कहा जाता है। सृष्टि के एक चक्र को, 5000 वर्ष के एक साइकिल को कल्प कहा जाता है। जैसे 1250 वर्ष के समय टाइम पीरियड को युग कहते हैं, इस प्रकार 5000 वर्ष के चक्र को कल्प कहा जाता है। तो कल्प वृक्ष माना सृष्टि वृक्ष। शास्त्रों में इस कल्प वृक्ष की एक बहुत सुंदर कहानी है। कल्प वृक्ष को वे ऐसा चमत्कारी वृक्ष बताते हैं कि ऐसा एक वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर संकल्प करने से वो संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। उसके लिए एक कहानी वो बताते हैं कि एक मुसाफिर था और गर्मी के दिन थे, वो लंबी मुसाफिरी करके आया, अचानक कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। उसे विचार आया कि बहुत गर्मी है, प्यास लगी है, पानी मिल जाए तो अच्छा है, तो पानी के घड़े आ जाते हैं। वो पानी पीकर प्यास बुझाता है, फिर उसे विचार आता है कि भूख भी लगी है, भोजन मिल जाए तो अच्छा है, तो भोजन के थाल आ जाते हैं। फिर उसे होता है कि अभी कड़ी धूप है, थोड़ा आराम करके ही आगे चलते हैं, तो सोने के लिए बहुत सुंदर पलंग आ जाता है। फिर उससे विचार आता है कि जंगल में सो रहा हूं, कहीं कोई हिंसक प्राणी खा न जाए, तो हिंसक प्राणी खा जाते। मीन्स जैसा संकल्प किया वो सिद्ध हुआ। अब ये विवेक से समझने की बात है कि ऐसा कोई अगर वृक्ष हो तो इंसान क्या करेगा? वहीं जाकर बैठेगा ना, यहां क्यों आएगा? है ना, हर कोई वहीं वृक्ष के नीचे जाकर बैठेगा कि भाई संकल्प करने से ही सिद्धि हो जाती है, तो कौन मेहनत जीवन में करेगा? तो वास्तव में कोई स्थूल वृक्ष की बात नहीं, लेकिन ये संसार वृक्ष की बात है और उसके नीचे बैठना माना ये संगम युग बताया है। ये अगले कल्प वृक्ष का अंतिम भाग बताया है और ये नए वृक्ष के आदि का भाग ये संगम युग है, जो आज सुबह आपने समझा है कि कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच संधि काल को संगम युग कहा जाता है। ये संगम युग मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल युग है। ये वो युग है जब स्वयं निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा निमित प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सत धर्म की स्थापना का कार्य कराते। इसलिए ये वो युग है आत्म शुद्धि और परमात्मा प्राप्ति का समय। वास्तव में धर्म के पीछे, धर्म पालन करने के पीछे हर इंसान का लक्ष्य क्या होता है? आत्म शुद्धि और परमात्मा प्राप्ति, उसके लिए ही तो धर्म में लोग मानते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग धर्म रूपी साधन के झगड़े में चले गए हैं। धर्म का जो ध्येय है आत्म शुद्धि और परमात्मा प्राप्ति, उसको हम भूल गए हैं। तो संगम युग में जो अभी चल रहा है, जब स्वयं परमात्मा धर्म स्थापक बनकर सत धर्म की स्थापना का कार्य करते हैं और उस सत धर्म की स्थापना के लिए वे हमें अभी स्व धर्म में स्थित करते। स्व माना मैं, और मैं माना आत्मा। आत्मा का धर्म है शांति और पवित्रता। आत्मा का धर्म क्या है? फर्स्ट लेसन में समझा ना कि आत्मा के ओरिजिनल गुण धर्म कौन से हैं? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। तो हर आत्मा का धर्म है शांति और पवित्रता। तो सत धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा हमें स्वधर्म में स्थित करते, क्योंकि आत्मा सत्य है, अविनाशी है, अजर अमर है। इसलिए हम कहते हैं सत चित आनंद स्वरूप। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। प्रकृति सत्य है, अविनाशी है, पर चैतन्य नहीं। आत्मा सत्य है, चैतन्य है। परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद के सागर है। इसलिए अभी स्वयं परमात्मा विश्व के सभी धर्मों की आत्माओं को यही आदेश देते हैं कि अब इस देह के धर्म को भूल जाओ और आत्मा के धर्म में स्थित हो जाओ। क्योंकि देह के धर्म भिन्न भिन्न, जब हम बॉडी कॉन्शियस बनते हैं तब ये सारे भेद उत्पन्न होते हैं, देह के, धर्म के, जाति के, भाषा के, आयु के, लिंग के, नेशनलिटी के, ये सारे जो भेद की दीवारें हैं जिसमें आज संसार बंट गया है, उसका रूट कॉज क्या है? देह अभिमान। इसलिए विश्व के कोई भी धर्म की आत्मा हो, व्यक्ति हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, पारसी हो या यहूदी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, गृहस्थी हो या सन्यासी हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, है हरेक आत्मा। और हर आत्मा की आवश्यकता क्या है? शांति, पवित्रता। इसलिए परमात्मा का ये आदेश है कि अब देह के धर्म को छोड़ आत्मा के धर्म में स्थित हो जाओ। जिसको गीता की भाषा में कहेंगे सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। क्यों भगवान ने यह आदेश दिया? ये सोचने की बात है कि देह के धर्म और संबंध को छोड़ तुम मेरी शरण में आओ, ये आदेश क्यों दे रहे? अगर देह संबंधों में सुख होता तो भगवान क्यों छोड़ने के लिए कहता? देह धर्मों से सुख की प्राप्ति होती तो भगवान क्यों कहते कि छोड़कर मेरी शरण में आओ? क्योंकि उसमें अनेकता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अब आत्मा के धर्म में स्थित हो जाओ। इसलिए ये समय है देहभान को छोड़, देह धर्म संबंध के अभिमान को छोड़, आत्मा के गुण धर्म में स्थित होना। और वही तपस्या हम कर रहे हैं ना, राजयोग क्या है? स्वधर्म में स्थित होना। कहते हैं ना गीता में, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। उसका अर्थ ये हम समझ बैठे कि मैं हिंदू हूं तो उसमें ही मुझे स्थित रहना है, मुसलमान बनना भयावह है, मैं मुसलमान हूं हिंदू बनना भयावह, लेकिन ये सारे ही देह धर्म। पर धर्म मीन्स देह धर्म, स्वधर्म मीन्स आत्म धर्म। इसलिए ये समय है संकल्प सिद्धि का। अभी हम अपने मन को जितना परमात्मा की याद में लगाएंगे, श्रेष्ठ चिंतन में लगाएंगे, उतने वो संकल्प सफल होंगे, सिद्ध होंगे। जितना हम मन देह चिंतन, पर चिंतन, संसारिक चिंतन, व्यर्थ चिंतन में लगाएंगे उतना वो वेस्ट है। राजयोग के लेसन द्वारा ये तो आपने समझ ही लिया कि परमात्मा से जो कुछ हमें प्राप्त करना है, चाहे ज्ञान, गुण, शक्ति, वो मन और बुद्धि से ही हम कर सकते। इसलिए ये संकल्प सिद्धि का समय है कि अभी हम मन को अन्य सर्व बातों से हटाकर जितना स्वधर्म में स्थित करेंगे, परमात्मा स्मृति में लगाएंगे, उतने वो संकल्प सफल होंगे। और जितना हमारा चिंतन श्रेष्ठ, ऑटोमेटिक हमारा आचरण श्रेष्ठ होगा, कर्म श्रेष्ठ होगा, भाग्य श्रेष्ठ होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अभी धर्म स्थापना के समय जो मददगार बनेंगे, चाहे मन वचन कर्म से, तन मन धन से, वे ही इस सतयुगी दुनिया के प्रारब्ध को प्राप्त कर सकेंगे। जैसे जिन्होंने आजादी की मूवमेंट में मदद की, त्याग किया, सहन किया, उनको ही तो फिर वो नेता बन के, आजाद भारत के वो नेता बने। आज भी फ्रीडम फाइटर्स को गवर्नमेंट एक्स्ट्रा सुविधा दे रही है, क्योंकि उन्होंने उस मूवमेंट के समय मदद किया। तो ये हाईएस्ट गवर्नमेंट परमात्मा भी कहती है कि ये वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, ये सतधर्म की स्थापना का कार्य है। और हमेशा स्थापना के कार्य में ही तो मेहनत होती है। उस समय जो मददगार बनते हैं विचार से, वाणी से, कर्म से, वे ही उसकी प्रारब्ध को प्राप्त करेंगे। इसलिए संगम युग में परमात्मा जो सत धर्म की स्थापना का कार्य करते हैं, उसके फल स्वरूप आप देखिए ये कल्प वृक्ष के तने में दो युग बताए हैं, सतयुग और त्रेता युग। ये दो युग 2500 वर्ष समग्र विश्व में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत होता है। इसलिए इनको तने के रूप में बताया कि जैसे वृक्ष का मूल तना एक होता है, सारे वृक्ष का आधार वो तना होता है, इस प्रकार सतयुग और त्रेता युग में एक सतधर्म होता है। लेकिन सतयुग और त्रेता युग की प्रारब्ध का आधार संगम युग में किया हुआ पुरुषार्थ है। अभी जो देह धर्म को छोड़ आत्म धर्म में स्थित होंगे, वे ही इस एक धर्म वाली दुनिया में आ सकेंगे। जो अभी अपना स्वराज्य प्राप्त करेंगे, स्वराज्य माना आत्मा का कर्मेंद्रियों पर राज्य, जो अभी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, वे एक राज्य की दुनिया के मालिक बनेंगे। आज आप देखिए राज्य सत्ता अनेकों के हाथ में, इसलिए कितना लड़ाई झगड़ा तू तू मैं है। यहां एक के हाथ में राज्य सत्ता है, लेकिन इस एक राज्य वाली दुनिया में वो ही आ सकेंगे जो अभी इस परिवर्तन की वेला में परमात्मा के आदेश पर कर्मेंद्रियों पर स्वराज्य प्राप्त करेंगे। जो अभी अपनी मनमत को छोड़, अभी हम अपना जीवन जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कभी अपनी मनमर्जी से चलते, मनमत उसको कहेंगे, भाई मेरा मानना तो ये है, मेरे मन की इच्छा तो ये है। तो हम कभी अपनी मनमर्जी से चलते हैं, कभी परमत अनुसार चलते हैं, भाई उसने ऐसा कहा इसलिए मैं तो ये सफेद नहीं पहनूंगी, वो ऐसा कहते हैं इसलिए मैं तो ये नहीं करूंगी, तो परमत पर चले। तो अभी हम मनमत पर चलते हैं, परमत पर चलते हैं, मनुष्य मत पर चलते हैं, कोई गुरु मत पर चलते हैं, कोई शास्त्र मत पर चलते हैं। लेकिन अभी संगम युग में जो सभी मत छोड़कर एक भगवान की मत पर चलेंगे, श्री मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ मत पर चलेंगे वे एक मत की दुनिया में आ सकेंगे। मत माना ओपिनियन। आज एक ही बात के लिए अनेक मत होते हैं, अनेक ओपिनियन होते हैं, अनेक राय होती है। कोई भी काम करना आप शुरू करेंगे, 10 लोग 10 प्रकार की सलाह आपको देते हा? तो कभी हम अपनी मन के अनुसार चलते, कभी किसी के कहने अनुसार, कभी गुरु के कहने पर, कभी शास्त्र के कहने पर। लेकिन अब जो सभी मत छोड़कर भगवान की मत पर चलेंगे वो इस एक मत की दुनिया के मालिक बन सकेंगे। जो अभी भाषा भेद को भूलकर आत्मा की भाषा को अपनाएंगे। आज भाषा भेद भी कितना है, हम गुजराती है, हम मराठी है, हम कन्नड़ा है, आज कितना भाषा भेद है, उसकी कितनी कॉन्शियसनेस है। लेकिन जो ये भाषा के भेद को छोड़ आत्मा की भाषा को अपनाएंगे, आत्मा की भाषा क्या है? प्यार। आज आप कभी इस विश्वविद्यालय को अक्टूबर में, दिसंबर में, फ़रवरी, मार्च में इस ज्ञान सरोवर को विजिट करना। यहां विश्व के 70, 80, 50, 60 देशों के लोग आते जो ये हिंदी भाषा भी नहीं समझते। आप देख रहे हैं ये सारे ट्रांसलेशन के बूथ बनाए हैं, लेकिन फिर भी वे इस डिसिप्लिन में चलते, इस रूल्स रेगुलेशंस में चलते हैं। दादियां उनसे मिलती है, मुख की भाषा नहीं समझते हैं, वे नैनों की भाषा समझते, हृदय की भाषा को समझते, साइलेंस की भाषा को समझते। तो भाषा भेद को छोड़ जो प्रेम की भाषा को, शांति की भाषा को अपनाते हैं वे एक भाषा वाली दुनिया में आ सकेंगे। जो अनेक कुल को छोड़कर, अभी हमें अपने कुल जाति की कितनी कॉन्शियसनेस है, भाई हम इस कुल के हैं, हम इस जाति के, हम बनिया हैं, हम ब्राह्मीण हैं, हम राजपूत हैं, हम फलाने, हमारा कुल तो ये है, ये शूद्र कुल के हैं, हम वैष्णव कुल के हैं, कितना छुआछूत और ऊंच नीच हो गया है। तो जो देह के कुल जाति को भूल, क्योंकि कर्म से तो आज हर कोई शूद्र बन गया है, शरीर की ज्ञाति से ब्राह्मण है, लेकिन उसके आहार विहार और आचार विचार को देखो तो आज हर कोई पतित शूद्र बन गया है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि देह के जाति कुल को छोड़ जो ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं में चलेंगे, कि भगवान के हम बच्चे हैं, उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस मर्यादा में जो चलेंगे वो इस एक कुल वाली दुनिया में आ सकेंगे। तो कहने का भावार्थ ये है, सतयुग और त्रेता युग में जब समग्र विश्व में एक सत धर्म की शक्ति है और उस एक सत धर्म के प्रभाव में सारा ही विश्व पूर्ण सुख शांति और पवित्रता का है, उसका आधार संगम युग में किया हुआ पुरुषार्थ है। इसलिए ये स्थापना का कार्य, इसके फल स्वरूप ये प्रारब्ध, ये राजभाग्य हमें मिलता है। यहां कोई धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा नहीं है, मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, पूर्ण सुख शांति और पवित्रता की दुनिया है। इसलिए इनको स्वर्ग कहते हैं, सतयुग दैवी स्वराज्य रामराज्य कहते हैं। यहां धर्म के नाम पर कोई मंदिर नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, धर्म के नाम पर कोई क्रियाकांड नहीं है, क्योंकि यहां धर्म आचरण में समाया हुआ है। धर्म जीवन की धारणा के रूप में है, इसलिए यहां हम धर्म श्रेष्ठ माना कर्म श्रेष्ठ है। हम प्रैक्टिकल में स्वयं देवी देवता होते हैं। तो यहां हमें धर्म का सही ज्ञान और पुरुषार्थ करना है। यहां धर्म आचरण में समाया हुआ है। तो दो युग हम अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। यहां हमें कोई ज्ञान नहीं है, योग नहीं है, यहां हमें परमात्मा की याद नहीं है, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं। परमात्मा की याद से जो सर्वोत्तम पद हम प्राप्त कर सकते हैं, उस देव पद को हम यहां प्राप्त है, इसलिए हमें यहां भगवान को याद करने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे आप MBBS बन गए, इंजीनियर बन गए, फिर आप कॉलेज में जाके पढ़ते नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के फल स्वरूप वो स्टेटस, वो क्वालिफिकेशन आपने प्राप्त कर लिया। इस प्रकार संगम के फल स्वरूप यहां हम स्वयं देवता बन जाते हैं, दिव्य गुण आचरण में आ जाते हैं, इसलिए फिर ये पुरुषार्थ वहां नहीं। इसलिए कहते हैं ये धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ युग है। धर्म की मर्यादा अनुसार राज्य सत्ता चलती है, इसलिए धर्म और कर्म का समन्वय है। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि जब आप बिल्डिंग बनाते हैं और स्लैब डालते हैं तो कितना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, कितनी प्लेट्स और नीचे कितने खंभे लगाते हैं और स्लेब भरते। जब वो स्लेब फिक्स हो जाता है फिर आप क्या करते, स्ट्रक्चर निकाल देते हैं। फिर वो बांबू की प्लेट्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्लेब फिक्स हो गया है। तो जब संगम युग के पुरुषार्थ के फल स्वरूप, ज्ञान और योग के फल स्वरूप, जब दिव्यता और पवित्रता जीवन में फिक्स हो जाती है, तो फिर कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं रहती है। हम अपनी सुख की दिव्य प्रारब्ध भोगते हैं। इसलिए जन्म बाय जन्म जैसे प्रारब्ध भोगते जाते हैं, हमारा सत्कर्मों का जो जमा का खाता है वो खत्म होता जाता है। जैसे आपने 10,000 कमा लिए, नया कमाना बंद कर देते हैं और रोज खर्च करते हैं, तो आखिर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां हम अपनी प्रारब्ध भोगते हैं, कोई आध्यात्मिक पुरुषार्थ नहीं करते हैं, इसलिए त्रेता के अंत में हमारी ये दैवी प्रारब्ध समाप्त हो जाती। इसलिए 2500 वर्ष के बाद ये द्वापर युग शुरू होता है, जहां हम फिर से बॉडी कॉन्शियस बनने लगते हैं, क्योंकि समय और प्रकृति के संसर्ग में आकर हम अपनी दैवी प्रारब्ध भोगते हैं, तो धीरे धीरे हम पुनः बॉडी कॉन्शियस बनने लगते हैं। और बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण आत्मा की पवित्रता खत्म हो जाती है। देहाभिमान के कारण मनोविकार उत्पन्न होते हैं, हमारी पवित्रता और दिव्य गुण खत्म होने लगते हैं, इसलिए आंतरिक सुख और शांति खत्म होती है। तो मुख्य पवित्रता और दिव्य गुण खत्म होने के कारण यहां हम अपने को देवता नहीं कह सकते, इसलिए यही आदि सनातन देवी देवता धर्म द्वापर युग से आदि सनातन हिंदू धर्म कहलाने लगता है। इसलिए हिंदुओं के पूज्य देवी देवता है। तो देवी देवताओं के हम वंशज, हम भी तो देवता होने चाहिए ना, लेकिन वो दिव्यता रही नहीं, पवित्रता रही नहीं, इसलिए देवता तो कहला नहीं सकते। तो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू और उससे हमने धर्म भी हिंदू कह दिया। इसलिए द्वापर युग से यही आदि सनातन देवता धर्म हिंदू धर्म कहलाया जाता है। और उसके बाद का इतिहास हम सब जानते हैं कि कैसे द्वापर युग में हिंदू के धर्म में चार वर्ण हो जाते हैं, वर्णाश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहले ये वर्ण प्रथा थी, माना व्यक्ति की क्वालिटीज के आधार पर व्यवस्था थी, वो ही धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियस होने से वो वर्णाश्रम जाति प्रथा में बदल गई, जो आज हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा कलंक माना जाता है। और इतिहास बताता है कि विशेष ब्राह्मण वर्ग जो है समाज का, वो धर्म का जैसे एजेंट बन जाता है और वो ही शास्त्र रचना, मंदिर रचना, गुरु, तीर्थ यात्रा, भजन, कीर्तन, व्रत, उपवास, यज्ञ, योग, होम, हवन, ये धर्म के नाम पर सारे क्रियाकांड द्वापर युग से शुरू होते हैं। इसलिए धर्म की जो शक्ति है, पवित्रता, दिव्य गुण, वो यहां खत्म होते हैं। इसलिए हिंदू धर्म के नाम पर अनेक क्रियाकांड शुरू होते हैं और उसके साथ साथ अन्य धर्मों का भी द्वापर युग में प्रारंभ होता है। तो चित्र में वृक्ष की डालियों के रूप में आप देखो द्वापर युग में चार धर्म बताए हैं। इधर वेस्ट, पश्चिम की दुनिया में सबसे पहले इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना होती, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि पुनः, क्योंकि इस्लाम धर्म ने कानून, कायदे कानून बताए और वो स्ट्रिक्टली उसका पालन करते हैं, क्योंकि जब कोई भी स्ट्रक्चर ढीला हो जाता है तो उसे पहले टाइट किया जाता है। तो इस्लाम धर्म ने संसार को लॉ सिखाए, कानून बताते ना कि भाई उनके पांच नियम है, भाई नमाज पढ़ना, जकात भरना, ईश्वर के प्रतिनिधि बनकर काम करना, इस प्रकार उनकी पांच बातें हैं। तो इस्लाम, इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। इधर भारत में जब हिंदू धर्म ने, ब्राह्मण वर्ग ने धर्म के नाम पर क्रियाकांड, भय, हिंसा का वातावरण बनाया, आपने इतिहास पढ़ा होगा ना कि कैसे आर्य और द्रविड़ों के समय की बातें, यज्ञ होम हवन करते थे, पशु की बलि देते थे और एक ब्राह्मणों का ही आधिपत्य था। आम जनता शास्त्र की बातें समझ नहीं सकती थी संस्कृत में होने के कारण, इसलिए उन्होंने ही पूरा अपने को प्रभुत्व कर दिया और बाकी सबको नीच गौण समझा। तो हिंदू धर्म के विविध क्रियाकांड के नाम पर जब हिंसा, अंधश्रद्धा, भय, अज्ञानता का वातावरण बना, तो भारत में ही आप देखिए बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, जिसने हमें मीनिंग, जीवन का मीनिंग समझाया, अंडरस्टैंडिंग दी। उन्होंने हमें आत्मा, परमात्मा के मूल सत्यों का ज्ञान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मोरालिटी पर भार दिया, करुणा, मैत्री, आपस में प्यार, अहिंसा, इन सब बातों पर बताया और ये बताया कि जीवन में कर्म ही मुख्य है। इच्छाओं से मनुष्य दुख के वश होता है और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर वो मुक्त हो सकता है। तो उन्होंने लाइफ का मीनिंग समझाया, हमें अंडरस्टैंडिंग दी कर्म के बारे में। उधर वेस्ट में यीशु ख्रिस्त द्वारा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की हुई, जिसने मुख्य लव, प्यार की बात सिखाई, क्योंकि यहूदियों के द्वारा जो क्रूरता का राज्य था, तो उन्होंने मानवता के संबंधों में प्यार की महिमा सिखाई। तो इस प्रकार जो एक देवता धर्म था, वो द्वापर युग में मुख्य चार धर्मों में विभाजित हो गया, हिंदू, इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियन। तो अब आप सोच सकते हैं कि कोई चीज अखंड पूरी हो और उनके चार हिस्से कर दो तो उनकी शक्ति में भी तो अंतर पड़ जाएगा। इसलिए धर्म के नाम पर मतभेद, मनभेद, मत मतांतर, लड़ाई झगड़े, युद्ध द्वापर युग से शुरू हुए, क्योंकि हरेक समझने लगा कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म स्थापक ऊंचा है, हमारा धर्म ज्ञान सत्य है, हमारी मान्यताएं सही है, हमारे तीर्थ स्थान महान है। इसलिए धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े द्वापर युग से शुरू हुए। हां, अगर ये धर्म द्वापर युग में नहीं स्थापन होते तो ये विश्व देह अभिमान के वश कब से विकारों के गर्त में जाकर खत्म हो जाता। लेकिन इन धर्म स्थापकों ने आकर अपने अपने धर्म का ज्ञान देकर समाज को सुधारने की कोशिश की। जैसे मैंने बताया कि हरेक धर्म स्थापन हुए कुछ वैल्यूज को लेकर, जो उस समाज में उस समय कम थे, और इसलिए प्रारंभ में वो कुछ थोड़े समाज में थोड़े समय के लिए परिवर्तन ला भी सके। तो हम कह सकते हैं कि द्वापर युग से विकारों के कारण गिरते हुए विश्व को थमाने का इन लोगों ने कार्य किया, लेकिन आखिर भी ये धर्म स्थापक थे, परमात्मा नहीं थे, इसलिए उनकी शक्ति मर्यादित थी। जैसे ही वो धर्म स्थापक गए, इतिहास हमें स्पष्ट बताता है कि उन धर्मों का पतन शुरू हो गया। इब्राहिम के जाने के बाद इस्लाम धर्म शिया और सुन्नी दो मुख्य विभागों में विभाजित हो गए और आज तो उसमें अनेकानेक संप्रदाय और पंथ बन गए। बुद्ध के जाने के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान इन दो मुख्य संप्रदाय में विभाजित हो गए। यीशु ख्रिस्त के जाने के बाद कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये दो में क्रिश्चियनिटी बट गई। इसलिए जैसे ही ये धर्म स्थापक गए उनके धर्मों का पतन शुरू हो गया। द्वापर के अंत में आप देखिए शंकराचार्य द्वारा संन्यास मार्ग की स्थापना होती, क्योंकि इतिहास बताता है कि द्वापर युग में भी भारत में बहुत ही धन वैभव और समृद्धि थी। चंद्रगुप्त के समय की बातें, राजा हर्षवर्धन के समय की बातें, विक्रमादित्य के समय की बातें हम इतिहास में पढ़ते हैं कि उस समय भी भारत में कितनी समृद्धि और वैभव था। इतिहास में बताया है ना कि चीनी मुसाफिर फाहियान और ह्यूएन संग जब भारत में आए तो उन्होंने भारत का क्या वर्णन किया, हाँ, कि ये वो देश है जहाँ इतनी समृद्धि है फिर भी लोग सदाचारी हैं, वहाँ ताले नहीं लगते हैं, कोई गुनाह नहीं करते हैं, छोटे मोटे गुनाह पर भी कड़ी सजा दी जाती थी, राजा प्रजा वत्सल होते थे, पूरा राज भंडार दान कर देते थे। इसलिए द्वापर युग में भी वैभव बहुत था और हम देहाभिमान में आते हैं, बॉडी कॉन्शियस बनते हैं, तो अंडरस्टूड है कि व्यक्ति बॉडी कॉन्शियस हो और वैभव उनके पास हो तो रिजल्ट क्या आएगा, विलास उत्पन्न होगा, प्रमोद उत्पन्न होगा। इसलिए धर्म के अधिकारी भी वैभव के विलास में चले गए। तब शंकराचार्य ने संन्यास मार्ग की स्थापना की, उन्होंने त्याग और वैराग्य की बातें की और हिंदू धर्म को फिर से खड़ा किया। उन्होंने बहुत वैराग्य उत्पन्न करने के लिए कहा कि संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, संसार का सुख कागविष्ठा के समान है। उन्होंने इतने तक कहा कि गृहस्थ जीवन नरक का द्वार है, इसलिए अच्छे अच्छे राजाओं ने भी अपने राज्यपाट छोड़ करके संन्यास धारण किया। राजा भर्तृहरि की बात हम पढ़ते हैं ना इतिहास कि जिन्होंने अपना राज्यपाट छोड़ करके संन्यास मार्ग ली। इसलिए सैक्रिफाइस, शंकराचार्य ने त्याग बलिदान की बातें सिखाई। जब कोई चीज खत्म हो रही हो, टूट रही हो, तो हमें उसको बनाए रखने के लिए कुर्बानी देने की आवश्यकता होती, कुछ त्याग करने की आवश्यकता होती। तो बेशक उन्हों की भावना अच्छी थी कि लोगों को विकारों से वैराग्य आवे, परमात्मा से प्यार जुटे, लेकिन उन्होंने जो विचार दिए वो विचार सही नहीं थे, क्योंकि जगत मिथ्या नहीं है। अगर जगत मिथ्या है तो स्वयं अपने को जगत गुरु कहलाने वाले वो भी तो मिथ्या हो जाएंगे, फिर तो जगत नियंता भी मिथ्या हो जाएगा। इसलिए जगत का कलियुगी स्वरूप मिथ्या है, टोटल जगत मिथ्या नहीं, विकारी जीवन का सुख कागविष्ठा समान है, पवित्र दैवी जीवन का सुख तो श्रेष्ठ है ना। तो घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, विकारों को छोड़ने की आवश्यकता है। जन्म मरण के चक्र से छूटने की आवश्यकता नहीं है, पाप कर्मों से छूटने की आवश्यकता है। इसलिए इन धर्मों के आने के बावजूद भी आज कलयुग ही आ गया है, और हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर अनेक संप्रदाय, अनेक मठ पंथ आश्रम सोसाइटी समाज बन गए हैं, जो आज के कलयुग का ये चित्र है। इसलिए आम जनता उलझ गई है कि आखिर हम किसको माने, क्या सत्य है। इसलिए आज दो रिजल्ट कलयुगी समाज में दिखाई देते हैं कि धर्म की मूल शक्ति रही नहीं है, धर्म के नाम पर अधर्म का स्वरूप बन गया है। तो आप देखिए, यहां सत धर्म की स्थापना होती है, यहां धर्म आचरण में होता है, यहां धर्म अनेकता और क्रियाकांड में जाता है, और कलयुग में धर्म ही अधर्म बनने लगते हैं। इसलिए धर्म के नाम पर भी पाप कर्म है, धर्म स्थानों में भी पाप कर्म है, धर्म के नाम पर स्वार्थ है, क्रियाकांड है, धर्म कमाई का साधन बन गया है। आप देखिए, जैसे आप नौकरी धंधा करके बिजनेस करके पेट भरते हैं, ऐसे कई क्रियाकांड कराते हैं, होम हवन कराते हैं, कथा कराते हैं और अपना पेट भरते हैं, तो धर्म कमाई धंधा बन गया है। इसलिए धर्म में शक्ति नहीं है, हमारे आचरण में परिवर्तन नहीं है, रोज मंदिर जाते हैं और रोज जैसे हैं वैसे ही रहते, मुख से कहते हैं विषय विकार मिटाओ और बाहर आके हम ही कहते हैं कि विकार तो होने ही चाहिए ना। हमारा आचरण ही हमारी मान्यताओं को खंडित करता है। इसलिए आज संसार में दो रिजल्ट है, एक है अंध श्रद्धा, धर्म के नाम पर अज्ञानता, अंधश्रद्धा, गलत रस्म रिवाज। वो अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, उनको कितना भी सत्य समझाओ, लॉजिकली समझाओ, साइंटिफिकली समझाओ, प्रैक्टिकल जीवन के प्रमाण से समझाओ, तो भी वो नहीं मानते। वो कहते हैं हम तो जो मानते आए वही मानेंगे, हमें तो भगवान आके कहे ना, फिर भी हम शास्त्रों की ही बात मानेंगे। तो ये एक अंधश्रद्धा वाला वर्ग है, और दूसरा है अश्रद्धा, नास्तिक वर्ग जिसको कहते। वो कहते छोड़ो धर्म को, खाओ पियो और मौज करो। वे भोगवादी और भौतिकवादी बन गए। जब ऐसी कलयुग के अंत में संसार की स्थिति बनती है, तब आप देखिए चित्र में कल्प वृक्ष के अंत में पुनः प्रजापिता ब्रह्मा दिखाए हैं कि फिर से कलयुग के अंत में फिर ब्रह्मा तन में परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं और हमें ब्रह्मा मुख से धर्म का सही ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं बच्चों, धर्म का अर्थ है धारण करना, कमल पुष्प समान। अब देखिए कमल पुष्प बताया है, कमल पुष्प समान पवित्र जीवन बनाना। जैसे कमल कीचड़ में उगते हुए कीचड़ से अलिप्त रहता है, उसको कीचड़ क्या, पानी भी उस पर नहीं टिकता है। इसलिए कमल पुष्प की विशेषता बताई जाती है, अलिप्त। डिटैचमेंट। देवताओं के हर इंद्रिय की तुलना कमल पुष्प से करते, हस्त कमल, नैन कमल, मुख कमल, चरण कमल, क्योंकि देवताएं कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी विषयी आकर्षण से मुक्त थे। इसलिए परमात्मा कहते हैं, गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनो, योगी बनो। कमल फूल समान विकारों से अलिप्त रहना, ये है प्रैक्टिकल धर्म का पालन करना। अपना गृहस्थ संबंध, जिम्मेवारी, प्रवृत्ति नहीं छोड़नी है, लेकिन उसमें जो विकार है उसे छोड़ना। पत्नी बच्चों को नहीं छोड़ना है, विषय वासना और मोह को छोड़ना। धंधा नहीं छोड़ना है, धन साधन कमाना नहीं छोड़ना है, लेकिन लोभ लालच को छोड़ना। गृहस्थ जीवन विषय भोग के लिए नहीं, योग के लिए है। आप सोचिए ना, लक्ष्मी नारायण, राम सीता, राधे कृष्ण, वो भी तो पति पत्नी थे, उसकी पूजा होती है, हम उनको नमन करते हैं। आज के गृहस्थी की, आज के पति पत्नी की पूजा क्यों नहीं होती? वो भी तो हमारे जैसे मानव शरीरधारी है, क्योंकि उनका गृहस्थ जीवन पवित्र था। इसलिए परमात्मा हम आत्माओं से इस अधर्म के अंत और सतधर्म की स्थापना के समय यही सहयोग मांगते हैं कि पवित्र बनो, योगी बनो। जो पवित्र बनेंगे वे कृष्ण की पवित्र दुनिया के मालिक बन सकेंगे। इसलिए यहां फिर से दिखाया है कि श्री कृष्ण स्वर्गीय दुनिया लेकर आ रहे हैं, लेकिन उस सतयुगी दुनिया के मालिक वही बन सकेंगे जो अभी पवित्र और योगी बनेंगे। तो आप देखिए, एक तरफ स्वयं परमात्मा ये सारा सतधर्म की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। इस चित्र में आप देखिए, माला के बीच बिताया है कि आज हजारों लाखों नर नारियों ने अपना जीवन परमात्मा के आदेश पर पवित्र और योगी बनाया है। वे विकारों पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो विषय विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त करते हैं, उसकी ही यादगार ये विजयी माला के मणके हैं। जो भक्ति मार्ग में माला हम फेरते हैं, लेकिन हम जानते नहीं है कि ये मणके हम क्यों फेरते, ये माला किसकी यादगार। हम उसको विजयंती माला कहते। तो अब हमें माला फेरनी नहीं है, लेकिन विकारों पर विजय प्राप्त कर माला के विजयी दाना बनना है। तो एक तरफ परमात्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी जगदम्बा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा ज्ञान, योग और पवित्रता की शक्ति से सतधर्म की स्थापना का कार्य करा रहे हैं। दूसरी ओर ऊपर देखिए, सबसे ऊपर ये अधर्मों के महाविनाश की तैयारियां भी हो चुकी है। इसलिए वर्तमान समय को कौन सा समय आप कहेंगे? शास्त्रों की भाषा ये कौन सा समय? एक तरफ सतधर्म की सेना खड़ी है, एक तरफ ये अधर्म की सेना खड़ी है। ये ही महाभारी महाभारत युद्ध का समय। महाभारत युद्ध में क्या बताया? एक तरफ धर्म की सेना पांडव बताए, दूसरी ओर अधर्म के प्रतीक कौरव सेना बताए। तो वर्तमान समय ही महाभारी महाभारत युद्ध का समय है। यही अधर्म के विनाश और सत्य धर्म की स्थापना का समय है। हमारे में से ही कोई यादव है, कोई कौरव है, कोई पांडव है। पांडव कौरव कोई स्पेशल हो नहीं गए हैं। महाभारत का युद्ध कोई ऐतिहासिक युद्ध नहीं है, लेकिन भगवान जब संगम युग में आते हैं, कलयुग के अंत समय, तब हमारे में से ही कोई कौरव, कोई पांडव, कोई यादव। कहते हैं ना, पांडव 5 ही थे, कौरव 100 थे। भगवान को पहचानने वाले, भगवान को अपना साथी और सारथी बनाने वाले आज कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं। आज हम हजारों को, लाखों को संदेश देते हैं, लेकिन भगवान की मत पर चलने के लिए कितने लोग तैयार होते? बहुत कम। इसलिए कहते हैं पांडव 5 थे। वरना ज्ञान तो क्या, वो भी क्या बताते हैं कि युद्ध के मैदान में दिया, तो क्यों सिर्फ 5 पांडव ही पहचान सके और उसको मानने तैयार हो? ये वो विवेक की आंख है। ज्ञान सबको दिया जाता है, लेकिन स्वयं को पहचानना, उस पिता को पहचानना, समय को पहचानना और भगवान को अपना जीवन साथी बनाना, ये कोटों में कोई ही करते हैं। इसलिए जब कई लोग हमसे पूछते हैं कि बहन जी सभी पवित्र योगी बन जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? उन्हों को संसार की चिंता है, अपनी चिंता नहीं है। खुद भले विकारों में सड़ते रहे, उनको ये चिंता है कि ये विकारी कलयुगी दुनिया कैसे चलेगी। पर इसको तो अब नहीं चलाना है ना, हमें तो पवित्र दुनिया चाहिए ना, सुखमय दुनिया चाहिए। पर हम उनको यही कहते हैं कि भाई सभी कहां बनते हैं? लाखों को कहते हैं, कोई एक विरला तैयार होता है। इसलिए हम वो सच्चे पांडव है, शिव शक्ति पांडव सेना, जो भगवान को अपना साथी बनाते हैं, भगवान की आज्ञा पर चलते हैं और विकारों से युद्ध कर विकारों पर विजयी बनते। और ये है भारतवासी, अज्ञानता में और विकारों में फंसे हुए देहभिमानी मनुष्यात्माएं, कौरव जिसको कहेंगे। कौरवों का क्या दिखाया है कि वो एक इतनी सी जमीन के लिए झगड़े, वही बताया है। तसु भर जमीन के लिए उन्होंने युद्ध किया। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटी, जुआ खेला, ये क्या है? आज वही चिन्ह हम देख रहे हैं। सारा विश्व आज मन भेद, मत भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, जाति भेद, रंग भेद, प्रांत भेद, सीमा भेद, छोटी छोटी बात के लिए घर घर में झगड़े हैं। इसलिए कोई एक दुर्योधन नहीं हुआ, कोई एक दुशासन नहीं हुआ, आज घर घर में दुर्योधन है, दुशासन। महाभारत में क्या कहा है? दुर्योधन के मुख से ये श्लोक बताया है। दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्मम, न च मे प्रवृत्ति ही। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, लेकिन मैं आचरण में नहीं ला सकता। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति ही। मैं जानता हूँ अधर्म क्या है, लेकिन मैं मुक्त नहीं हो सकता। तो क्या ये एक दुर्योधन की स्थिति है कि हम सब की वो स्थिति है आज? इसलिए देहाभिमान और विकारों में फंसे हुए भारतवासी मनुष्यात्माएं कौरव, जो आपस में ही लड़ाई झगड़ा करके खत्म होंगे। इसलिए बताया है कि ये ग्रह युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं से भारत का महापरिवर्तन होगा। आपस में ही लड़ झगड़ के, हिंदू मुस्लिम के झगड़े, हर छोटी छोटी बात में झगड़े, पूरा भारत आप देखो सुलग रहा है। हमारे अंतर संघर्ष और विग्रह की तरह। इसलिए भारत का विनाश अणु युद्ध से नहीं होगा, क्योंकि भारत में पुनः स्वर्ग शुरू करना है। इसलिए भारत का महाविनाश, महापरिवर्तन ग्रह युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं से होगा। फ्लड आते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, अकाल पड़ते हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। और यूरोपवासी यादव, विशेष इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियंस, उनका महाविनाश अणु युद्ध से होगा। क्योंकि इतने जो अणु शस्त्र बनाए हैं, वो शोकेस में रखने के लिए नहीं बनाए हैं। शस्त्रों का इतिहास क्या कहता है? इंसान ने जो भी शस्त्र बनाए वो प्रयोग किए हैं, चाहे तीर बनाए, तलवार बनाई, भाला बनाया, बंदूक बनाई, टैंक बनाए, बॉम्ब बनाए। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव अपने ही विनाश के लिए खुद ने ही ये साधन बनाए। जबकि पहला अणु बॉम्ब जब फेंका था, कहां फेंका था? हिरोशिमा नागासाकी पर। और जो विनाश का दृश्य देख के वो वैज्ञानिक और फेंकने वाले पागल हो गए थे, फिर भी इंसान ने एक से बढ़कर एक भयानक अणु शस्त्र, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, केमिकल बॉम्ब्स आज बनाए। इसलिए जैसे यादवों का गायन है, कहानी पढ़िए ना कि यादवों ने अपने पेट से ही मिसाइल निकाले और अपने कुल का विनाश किया। तो विपरीत बुद्धि से जो उन्होंने शस्त्र बॉम्ब्स उत्पन्न किए हैं, उससे खुद ही खुद का विनाश करें। तौणी युद्ध, ग्रह युद्ध और प्राकृतिक आपदा से ये वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसलिए लेसन का सार ये है कि वर्तमान समय ही महाभारी महाभारत युद्ध का समय अंडरस्टूड है। स्वयं भगवान आए हैं, सत्य गीता ज्ञान दे रहे हैं। इस ज्ञान और योग की शक्ति से पवित्र योगी बनना है, विकारों पर विजय प्राप्त कर विजयी माला के मणके बनना। हर चक्र रिपीट होता है ना, आज 24 घंटे का दिन और रात का साइकिल है, वो भी रिपीट होता है। सदियों से डे एंड नाइट ये साइकिल चलता ही रहता है। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात के बाद दिन, इट इज ए साइकिल। ऐसे सीजन्स का साइकिल, गर्मी आती है, बारिश होती है, फिर ठंडी आती है, फिर गर्मी आती है, ये सीजन्स का साइकिल है जो रिपीट होता है। तो यही तो बताया, प्रलय मीन्स महाविनाश, ग्रेट चेंज, पूर्ण विनाश नहीं। तो वही तो हुआ, महाविनाश होगा ना, ये है वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए ये महाविनाश है। कलियुगी पतित आत्माओं की दुनिया समाप्त हो जाएगी और पवित्र आत्माओं की सतयुगी दुनिया आरंभ होगी। हाँ, जो अभी लायक बनेंगे, बचेंगे, माना शरीर तो हर इंसान को छोड़ना है, वही आत्मा प्रवेश करेंगी जो अभी पवित्र बनेगी, वो सतयुग में आएंगी, बाकी आत्माएं परम धाम में बैठी रहेगी। ये है वो कल आपका आएगा लेसन, कल जो कर्म की गति का लेसन है उसमें वो सारा आएगा कि कैसे ये जन्म मरण का साइकिल है। कलयुग के अंत महाविनाश के बाद नंबरवार सभी आत्माएं वापस परम धाम जाएगी, फिर सतयुग में वो आत्मा आएगी जो सतयुग के लायक होगी, बाकी आत्माएं परम धाम में बैठेगी। फिर त्रेता की आत्मा आएगी, फिर द्वापर की आत्मा आएगी, फिर कलयुग की आत्मा आएगी। इसलिए कलयुग में जनसंख्या बढ़ती, क्योंकि कलयुग के अंत में सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं। समझा? क्योंकि भगवान ने सबको कहा, पर जो लायक बना, परम धाम रेस्ट की दुनिया, वो अच्छी दुनिया है, शांति की दुनिया है, पर सदा रेस्ट किसको अच्छा लगता है? नहीं, प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र में अच्छा समय है सतयुग, जब कर्म है, जीवन है, संबंध है, समाज है, पर विकार नहीं, दुख अशांति नहीं, वो है श्रेष्ठ समय। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमें ड्रामा से निकलकर परम धाम में बैठ जाए शांति में, वो कोई श्रेष्ठ लक्ष्य नहीं। श्रेष्ठ लक्ष्य ये है कि इस वर्ल्ड ड्रामा में हम रोल प्ले करें और हीरो एक्टर बने। बस आप देवता बन जाइए, क्योंकि हम बदलेंगे तो संसार बदलेगा। जो जानते हैं भगवान को, उनके कार्य को, उनके ज्ञान को और फॉलो करते हैं, वो संगम युग में, जो नहीं जानते हैं वो अज्ञानता और कलयुग में, क्योंकि ये तो संधि काल है ना। आप कितना समय चलेंगे है कोई गारंटी? मैं आपको कह दूं कि सतयुग में को आने में 10 साल है, पर आप कितना साल? इसलिए उससे मत जोड़िए, विश्व बदलेगा ही, हमें जवाबदार बनना है अपने को बदलने के लिए। ओम शांति।